यहोशू अध्याय 24। यहां यहोशू इसराइल के वंशों को ये अंतिम निर्देश दे रहा है। कल्पना कीजिए कि यहोशू बूढ़ा हो गया है, वो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहा है, उसने अच्छी सेवा की है, परंतु अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है, वो कमजोर हो गया है और उसकी आवाज भी भर्राने लगी है। फिर यहोशू ने इसराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, पर्वत एबाल और गरीजिम, और इसराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वो उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया, और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे। युद्ध में मैं तुम्हारे साथ था और वे तुमसे लड़े वरन, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इसराइल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वो तुमको आशीष ही आशीष देता गया, इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। यहोशू 24 अध्याय 1-10 पद। ध्यान दीजिए कि यहोशू के शब्द यहां प्रथम पुरुष में है, अर्थात ये वचन वास्तव में परमेश्वर के वचन है जो यहोशू के मुख से निकल रहे हैं। वे भविष्यवाणी के वचन हैं। मैंने, परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारी तलवार वो धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाक और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोशू 24:12-15 पद। यहोशू उनके सामने खड़ा होकर परमेश्वर के सब चमत्कारों का उल्लेख करता है, और ये स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता दी है, उन्हें चुनने की चुनौती देता है, क्योंकि वहां के निवासी विभिन्न देवताओं की उपासना करते थे। मनुष्य सदैव किसी न किसी की सेवा में रहता है, जैसे मनोभावनाएं, सिद्धांत, विचारधारणाएं, लालसाएं आदि। अतः यहोशू उन्हें चुनौती देता है कि वे चुने कि वे यहोवा की सेवा करेंगे या संसारिक मनुष्य के देवताओं की, जिनकी उपासना उस समय भी होती थी जब नूह के युग में जल प्रलय आया। मनुष्य अनेक देवताओं की पूजा करता है, उसके देवता जीवन को नियंत्रित करने वाले उसके सिद्धांत भी हो सकते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ये भी उसका देवता है। वो सफलता की अभिलाषाओं के वशीभूत होता है, ये भी उसकी देवता है। धन दौलत ये भी एक देवता है। आपको चुनना है कि आप इसकी उपासना करेंगे, सच्चे जीवित परमेश्वर की या अन्य देवताओं की। इब्राहिम का पिता तेरा भी मूर्ति पूजक था, अमोरी भी मूर्ति पूजा करते थे। उन्हें चुनौती देकर वो कहता है, मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु उसके परिवार पर उसकी आज्ञा चलती है। पिता अपने परिवार के लिए कहे कि वो और उसका परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, तो ये अति उत्तम बात होगी। इस पर इसराइल की प्रजा ने कहा, हम भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोशू ने उनसे कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। यहोशू 24:19 पर उन्होंने कहा था, हम करेंगे, परंतु यहोशू ने कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जब वे उससे दूर होंगे तथा विमुख होंगे, तब वो सहन नहीं करेंगे और उन्हें अवश्य दंड देगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हां, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नात सेरा में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इसराइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यहोशू 24:16-31 पर। ये बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर के वे चमत्कार, वे जो पहली पीढ़ी ने देखे हैं, आने वाली पीढ़ी में मुश्किल से ही याद किए जाते हैं कि परमेश्वर से निष्ठा निभाई जाए। कलीसियाई इतिहास में आत्मिक जागृति अनेक बार आती है और नई नई कलीसियाएं बन जाती है, परंतु परमेश्वर का कार्य आने वाली पीढ़ी में प्रभाव नहीं रखता है। वे सौंदर्यकरण, व्यवस्था, संरचना आदि में व्यस्त हो जाते हैं। वे परमेश्वर के कामों को नियम कायदों में बांध देते हैं, परंतु वे जिन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है, वे उस पर ही निर्भर करते हैं। इतिहास में देखें तो सच ही है, वे जिन्हें परमेश्वर के कामों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दूसरी पीढ़ी ही है जो डगमगा जाती है, क्योंकि उनमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की गाथा सुनाई नहीं गई है। ये मेरा अपना विश्लेषण है। मेरे विचार में जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो बहुमुखी होती है। हम प्रत्येक क्षेत्र में आशीष पाते हैं, आत्मिक आशीषें, सांसारिक आशीषें, शारीरिक आशीषें। साथ ही साथ हमें संघर्षों, विश्वास की परख, कमियों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब क्योंकि हम आशीषें पा चुके हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी संतान उन कठिनाइयों का सामना करे जिनसे हम गुजर चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वे भी हमारे जैसे विश्वास का जीवन जिए जैसा कि हम जी चुके हैं, कि प्रतिदिन के भोजन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस प्रकार हम अपने बच्चों को उन सब कठिनाइयों से दूर रखना चाहते हैं जिन्हें हम सब भोग चुके हैं। मैं सोचता हूं हम अपनी संतान को परमेश्वर में विश्वास, भरोसा और विश्वास के प्रतिफल में परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने से रोक रहे हैं। इस प्रकार उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वे परमेश्वर के उस चमत्कारी सामर्थ का अनुभव प्राप्त करें जिसका अनुभव हमने प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में परमेश्वर उनके लिए वो वास्तविकता नहीं बन जाता जो वो हमारे लिए था, क्योंकि उन्हें प्रत्येक भोजन के लिए उस पर भरोसा नहीं रखना पड़ता है। यहां अंत में यहोशू की बड़ी ही ध्यान देने योग्य टिप्पणी है, और मैं नहीं जानता कि ये अंत में क्यों दी गई है। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इसराइली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हामोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वो यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। यहोशू 24:32 पर यूसुफ के बेटे एफ्रेम गोत्र को शकेम का क्षेत्र मिला था। मैं नहीं जानता कि यूसुफ की हड्डियों के गाड़े जाने का उल्लेख यहां अंत के लिए क्यों रखा गया है। और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रेम की पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिप्ता पिनहास कहलाती है और उसको दी गई थी। यहोशू 24:33 पर इसराइल के इतिहास का एक पहलू अब समाप्त होता है और एक नया पहलू की शुरुआत होती है। अपने अगले अध्ययन न्यायियों की पुस्तक में हम देखेंगे कि परमेश्वर से दूर हो जाने में मनुष्य को समय नहीं लगता है। मेरे विचार में समृद्धि को संभालना बहुत कठिन काम है। मेरे पिताजी की टेबल पर एक उक्ति लिखी हुई थी, प्रभु कृपया मेरी क्षमता से अधिक समृद्धि मुझे न दे कि मैं तेरे प्रेम को संभाल ना पाऊं। वो अपनी दुर्बलता को समझते थे, वो जानते थे कि धन क्या हानि कर सकता है और की भी है। इस कारण वो बुद्धिमानी की ये प्रार्थना करते थे, बहुत लोगों को इतनी आशीष मिल गई है कि वो उनकी ईश्वर भक्ति को बहा ले गई क्योंकि संसार से प्रेम ने उनके जीवन में घर कर लिया। अध्याय 22 में हम यहोशू के एक निर्देश को भूल गए हैं जो उसने रूबेन गाद और मनशे को उस समय दिया था जब वे अपने घर लौट रहे थे। ये पद 5 में लिखा है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। मेरे विचार में ये एक बहुत ही उत्तम निर्देश है, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों में चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो, और इस प्रकार आप उसके साथ चलते चलते उसकी सेवा करते हुए उससे लिपटे रहते हुए उसकी आशीषों को पाओ।